तारापरी अब बिल्कुल एक इंसानी जीवन जीने के लिए तैयार थी। आज तारापरी को किसी के भी साथ की जरूरत नहीं थी। केवल घर से निकलने से पहले तारापरी ने कुछ पैसे माली काका से उधार ले लिए और बोली, काम करने के बाद जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपको लौटा दूंगी। माली काका को जो बगीचे की रखवाली करके पैसे मिलते थे उनमें से कुछ बचे हुए पैसे उन्होंने तारापरी को दे दिए। तारापरी ने माली काका के घर से निकलकर एक रिक्शा किया और साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर भी खरीदा जिसमें तरह तरह की नौकरी के इश्तहार थे। तारापरी ने उनमें से 3 जगह पर जाने का निर्णय लिया और उनमें से सबसे पहले वो एक कंपनी में गई। तारापरी ने जैसे ही कंपनी में कदम रखा उन्हें ऐसा लगा मानो किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। बेहद खूबसूरत बिल्डिंग थी जहाँ पर सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, शायद उस कंपनी का ड्रेस कोड था। तारापरी जैसे ही अंदर गई तो सबकी नज़र तारापरी पर पड़ी। सब तारापरी को ऐसे देख रहे थे मानो कोई एलियन वहां आ गया हो, क्योंकि तारापरी एक बेहद साधारण सी वेशभूषा में थी, लेकिन साधारण कपड़ों में भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सबको इग्नोर करके सीधी रिसेप्शन पर गई और वहां मौजूद एक लड़की से बोली, पेपर में इश्तहार देखकर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उस लड़की ने तारापरी को ऐसे देखा मानो कोई सड़क से उतकर वहां आ गया हो और बुरी तरह तारापरी को लटाड़ते हुए बोली, ये एक हाई क्लास कंपनी है और तुम ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ आ गई? मुझे तुम्हारे इंटरव्यू लेने वाले से मिलना है। अगर उसकी सोच भी तुम्हारे जैसी है तो आई प्रॉमिस मैं खुद ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगी जहाँ लोगों को उनके कपड़ों से जज किया जाता हो। तारापरी से टका सा जवाब पाकर वो लड़की एकदम से चिढ़ गई और उसने तारापरी को सबक सिखाने के लिए अपनी कंपनी के बॉस, जो कि एक बेहद खड़ूस और अकड़ू आदमी था, उसके केबिन में भेज दिया। उसे पता था बॉस उसे देखते ही उस पर बरस पड़ेंगे और अपनी सिक्योरिटी से उसे धक्का देकर बाहर फेंक देंगे। तारापरी समझ चुकी थी कि जरूर ये लड़की कुछ गड़बड़ करने वाली है, क्योंकि तारापरी उस लड़की की आंखों में छल देख चुकी थी। लेकिन वो देखना चाहती थी कि आखिर कौन है उस कंपनी का मालिक, और यही देखने के लिए वो उस लड़की के द्वारा बताए गए केबिन की ओर चल दी। केबिन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था जिस पर साफ साफ लिखा था, डोंट डिस्टर्ब मी। तारापरी को कुछ समझ नहीं आया कि वो अंदर जाए या नहीं। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सो कुछ देर वेट करके तारापरी सीधा दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और सामने का नजारा देखकर वो शॉक हो गई। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति केवल अंडरवेयर में खड़ा था और उसके ठीक सामने एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की एक बड़ी सी टेबल पर लेटी थी जिसके जिस्म पर केवल नाम मात्र के ही कपड़े थे। तारापरी का ये सब देखकर आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वो एक नज़र उस आदमी को देखती तो कभी उस लड़की को। सामने खड़े आदमी को समझ ही नहीं आया कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। ऐसे किसी लड़की को आया देख वो सकपका गया और जल्दी से अपने कपड़े उठाने की ओर भागा। तारापरी उसी तरह वहां खड़ी रही। तब वो आदमी कपड़े पहनकर तारापरी के सामने आया और चिल्लाने लगा, तुम क्या पागल हो गई हो? बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया जो मुंह उठाकर तुम इस केबिन में चली आई? टेबल पर लेटी लड़की भी तब तक उठकर कपड़े पहन चुकी थी और नज़र झुकाकर वहां खड़ी हो गई। तब तारापरी उस लड़की को देख आगे बढ़ी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उस लड़की के बारे में सब कुछ जान गई और ये भी जान गई कि इस आदमी ने इस लड़की को मजबूर करके अपने साथ सुलाया है। तारापरी का मन नफरत से भर गया और उसे परी लोक का वो राक्षस याद आ गया और वो समझ गई कि ये एक इंसानी राक्षस है, जिससे वो और गुस्सा हो गई। तारापरी उस वक्त बेहद गुस्से में थी और उल्टा वो इंसान उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तारापरी ने बिना कुछ सोचे समझे एक थप्पड़ उस अधेड़ आदमी के मुंह पर मार दिया जिससे वो सहन नहीं कर सका और दूर जाकर गिर गया। एक चांटा पड़ते ही वो एकदम खामोश हो गया और तारापरी को कुछ नहीं बोला, केवल एक टक देखता रहा। अगर तुमने इस लड़की को फिर से मजबूर किया तो अगली बार मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी, सीधा जान ले लूंगी तुम्हारी। तारापरी की धमकी सुनकर वो आदमी कांप कर रह गया, क्योंकि तारापरी का एक एक शब्द काफी गुस्से में बोला गया था जिसका सीधा असर उस आदमी के दिल और कानों पर हो रहा था और उसके कानों से हल्का हल्का खून भी आना शुरू हो गया था। अचानक वो भूल बैठा था कि वो इस कंपनी का बॉस है। अगर वो चाहे तो एक झटके से अपने आदमियों को बुलाकर तारापरी को अपनी कंपनी से बाहर फेंकवा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। कुछ तो ऐसा था तारापरी की आवाज में जिसमें बेहद दर्द और गुस्सा था। उस आदमी ने जल्दी से तारापरी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा और साथ ही साथ उस लड़की से भी माफी मांगने लगा जिसे उसने मजबूर किया था, और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था और बहुत रो रहा था। तब उस लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने तारापरी से कहा, इसे माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया इसे, ऐसा कहकर वो लड़की तारापरी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। तब तारापरी ने उसे संभाला और उस आदमी पर एक सरसरी सी नजर डालकर बाहर निकल गई। बाहर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की इंतजार ही कर रही थी कि कब वो लड़की बॉस द्वारा जलील होकर बाहर निकाली जाएंगी।
लेकिन जैसे ही उसने अकेले तारा परी को आता देखा, वो सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि ये लड़की तो अकेले आ रही है, इसे गार्ड ने धक्का देकर क्यों नहीं निकाला। और तभी उसने देखा उसका बॉस तारा परी के पीछे हाथ जोड़ता हुआ और माफी मांगता हुआ आ रहा था। लेकिन तारा परी ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जल्द से जल्द उस ऑफिस से बाहर निकल गई। और वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर वहीं रोने लगा, बिना ये देखे कि उसका सारा स्टाफ उसे देख रहा था। सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा था। तारा परी सड़क पर पैदल ही जा रही थी। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इतने गुस्से में थी कि सामने से आती गाड़ी को भी वो नहीं देख पाई और वो उस गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। वो गाड़ी किसी आम आदमी की नहीं थी। वो गाड़ी इस शहर के सबसे हैंडसम और डैशिंग बंदे, जो कि इस शहर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, जिनका नाम अमन राठौर था, उसकी गाड़ी थी, जो अपनी एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए होटल जा रहा था। उस वक्त किसी का उसकी गाड़ी से टकराना उसे बेहद नागवार लगा था। उसने अपने गार्ड्स को बोला, इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसने बिना तारा परी को देखे ही बोला था। तब एक गार्ड ने तारा परी को उठाया और उसका चेहरा देखकर चौंक गया और दूसरे गार्ड से बोला, अरे ये तो वही लड़की है। उनकी ये आवाज उनके बॉस अमन राठौर के कानों में पड़ी। तब वो गाड़ी में बैठते बैठते रुक गए और बोले, क्या कहा तुमने? तब एक गार्ड सर झुकाकर अमन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर ये वही लड़की है जिसने दो दिन पहले हमारे एक गार्ड को जोरदार तमाचा मारा था, जिसे आप ढूंढ रहे थे। ओह, अमन को याद आ गया, जब उसने अपने बॉडीगार्ड के कान से खून निकलता देख पूछा था कि उसे क्या हुआ है, तब काफी जोर देने पर उसने बताया था कि एक लड़की ने उसे मारा है। तब से वो गुस्सा हो गया था कि किसी लड़की की इतनी हिम्मत जो अमन राठौर के गार्ड को मारे। तब से उसने अपने कुछ लोगों को इस लड़की को ढूंढने में लगा दिए थे और आज किस्मत देखो, वो लड़की खुद सामने से चलकर आई और उसी की गाड़ी से टकराई थी। इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसके ठीक होते ही इसे मेरे सामने लेकर आओ।
जल्दी से दो गार्ड तारा परी को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका ट्रीटमेंट होने लगा और जल्दी ही उसे होश भी आ गया। तारा परी होश में आते ही बेड से उतर गई और उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे वो एक गाड़ी से टकरा गई थी। तारा परी को याद आया अभी तक उसे कहीं काम नहीं मिला था, इसलिए उसने जो दूसरी कंपनी के इश्तेहार को देखा था उसमें जाने की सोची और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलने लगी। तभी दो गार्ड उसके सामने खड़े हो गए। तारा परी सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगी। तब वो गार्ड बोले, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? तब एक गार्ड ने कहा, शायद तुम्हें याद नहीं, दो दिन पहले तुमने हम में से ही एक गार्ड को चांटा मारा था। तब से हमारे बॉस ने तुम्हें ढूंढने का ऑर्डर दिया था और आज देखो, तुम खुद ब खुद गाड़ी के सामने आ गई हो। हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने जाना है एक कंपनी में, सो तुम लोग मुझे जाने दो। वो गार्ड हंसने लगे और बोले, तुम हमारे बॉस से मिले बिना कहीं नहीं जा सकती हो। तारा परी ने जैसे ही ये सुना उसका पारा हाई हो गया और वह समझ गई कि ये गार्ड उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। इसलिए उसने उन गार्ड से कहा, कहीं तुम्हारे बॉस वो तो नहीं जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं? जैसे ही दोनों गार्ड्स ने पीछे मुड़कर देखा, तारा परी गायब हो गई।